देवियों सज्जनों, कल हमने विजयादशमी या दशहरा सेलिब्रेट किया, कल था। सो विजयादशमी का नाम अपने आप में इसका अर्थ बताता है। विजय मतलब विक्ट्री, दशमी शुक्ल पक्ष के अश्विन मास के जो ब्राइट हाफ है, शुक्ल पक्ष है, उसकी दसवीं तिथि है। बहुत सारे मैथोलॉजिकल लीजेंड्स इस पर होते हैं, जैसे कि हर पर्व के, हर फेस्टिवल के पीछे अनेक सारे कहानियां जुड़ जाती हैं, अच्छे और झूठ, मैथोलॉजिकल हिस्टोरिकल जुड़ जाते हैं। पर जो बॉटम लाइन है कि इसमें धर्म का अधर्म के ऊपर विजय होना, रामायण में राम रावण के साथ युद्ध करके उसको जीतते हैं, राम का जितना धर्म का विजय है, जिन्होंने अपनी जितनी भी मर्यादाएं हैं, जो भी धर्म है, वो युद्ध का धर्म हो, वो रिलेशनशिप का धर्म हो, वो एक दूसरे से संबंध रखने का धर्म हो, कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं किया कि अपनी मर्यादा को, अपने लिमिटेशन को क्रॉस करके आगे जाकर कुछ करें। दूसरी तरफ रावण, जो राम से ज्यादा ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, ज्यादा धार्मिक था, रिलीजियस था, उसके बावजूद भी उसके चरित्र में इतने सारे कलंक थे, इतनी सारी बुराइयां उसके कैरेक्टर में था, कि वो अधर्म का प्रतीक बना हुआ था, वो अधर्म का सिंबल बना हुआ था। तो रावण का मरना, राम का जीतना, ये उस धर्म का अधर्म के ऊपर विजय के रूप में सेलिब्रेट किया गया। पर अपने रियल लाइफ में भी हमारा जो कंस्टेंट डिलेमा है, फाइटिंग है, कि किसको चुने किसको ना चुने, हमारी जो अपनी अंदर की दशाएं हैं, उस जो अंदर की डिलेमा है, उससे डील करने के लिए ये फेस्टिवल, ये जो पर्व है विजयादशमी, हमें हेल्प करता है कि आफ्टर ऑल धर्म का विजय होता है और होना चाहिए। ये एक और दृष्टि से बड़ा इंटरेस्टिंग पर्व है, शायद दुनिया में और किसी कल्चर में, किसी बड़े कल्चर में या बड़े रिलीजन में ये आपको देखने को नहीं मिलता। इट्स ए फेस्टिवल ऑफ फेमिनिन पावर, जिसको आजकल के लोग दुर्गा के रूप में पूजते हैं। दुर्गा उस शक्ति का प्रतीक है जो फेमिनिन है। जैसे कि हमारे ट्रेडिशन में जितने भी पावर की चीजें हैं, वो उनको हमने महिला के रूप में कैरेक्टराइज किया है। वो ह्यूमन इमोशंस हो, वो नेचुरल पावर्स हो, और नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स हो, हमने सबको देवता कहा। देवता यहां पुराण की देवता के अर्थ है एक पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर थिंग, बीइंग, इमोशंस। जैसे हमने पानी को एक पर्सोनिफाइड फॉर्म में रखा कि ये वरुण है, धन को कहा कि ये कुबेर है। इसी तरह जो हमारी जो शक्ति है, हमने मैथोलॉजिकली उसको एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में हमने दुर्गा को प्रस्तुत किया। आपका जो ज्ञान है वो सरस्वती के रूप में है, आपका जो धन है वो लक्ष्मी के रूप में है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने समाज में, पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद भी, हमारे रिलीजियस थॉट्स में महिलाओं को न केवल बराबर, कभी उससे ज्यादा अधिकार देने की व अधिक रूप में पूजने की व्यवस्था की। इसलिए दुर्गा शक्ति का प्रतीक होती है। वो शक्ति पुरुष में हो या स्त्री में हो या किसी में भी हो, वो नारी के रूप में जानी जाती है। और हमारी जो संस्कृति है वो ऐसी ही है कि वो ज्ञान का उपासना करता है, ज्ञान की उपासना करता है, पर शक्ति को इग्नोर नहीं करता, शक्ति को भी उतने ही महत्व दिया जाता है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रसरति। जो देश शस्त्र के द्वारा सेव्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, उसी देश में ही आप शास्त्र चर्चा कर सकते हैं। अगर आपका देश की स्थिति हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ हो, अंदर चोर डाकू बदमाशों से परेशान हो, बाहर पड़ोसी दुश्मन देशों के कारण आप परेशान हो, ना उस देश में कोई संस्कृति बनती है, ना कोई ज्ञान पनपता है, ना कोई अच्छा विचार पनप सकता है। जितने भी देश आजकल आप देखते हैं जिनके अंदर और बाहर की हालत खराब है, वो मिडिल ईस्ट में इराक हो, सीरिया हो, साउथ ईस्ट में अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफ्रीकन के कुछ देश हो, जहां भी आप देखते हैं समाज क्रिमिनल के हाथ में या एक अव्यवस्थित समाज ज्यादा है, वहां आप कोई ज्ञान विज्ञान धर्म संस्कृति कला कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ये सब चीजें हमारे पास है वा होना चाहिए वा हो, ये तभी संभव है जब आपका देश सुरक्षित हो। अब सुरक्षा के लिए शक्ति की जरूरत होती है, ये हमारे पूर्वजों को भी समझ आता था कि केवल ज्ञान विज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें शास्त्र के भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना शास्त्रों का होना चाहिए। इसलिए यजुर्वेद का मंत्र कहता है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यम च उचर तस्स। जिस सोसाइटी में ब्रह्म ज्ञान मतलब ज्ञान जिसका प्राचीन काल में जिसकी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ब्राह्मण होता था, क्षत्रम शारीरिक बल जिसको रिप्रेजेंट क्षत्रिय करता था, जब ये ब्राह्मण और क्षत्रिय लिटरेरी नहीं स्पिरिचुअली ज्ञानी और ताकतवर व्यक्ति दोनों जिस देश में रहते हैं, ये दोनों के द्वारा जो देश सुरक्षित है वो देश या समाज या परिवार ज्यादा खुशहाल होता है। तो क्षत्र शक्ति या जो बल या पावर है वो उतने ही मायने रखता है जितना ज्ञान और विचार की है। इसलिए हमारे यहां सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की जब हम डिफाइन करते हैं, तमोगुण में बुराइयां हैं, रजोगुण में पैशन है, सत्वगुण अच्छाइयों का प्रतीक है, पर इन तीनों में से हम किसी को नकारते नहीं है। कोई भी अच्छा भला आदमी कभी तमोगुण को नकारता नहीं है या सत्वगुण को ही केवल अपनाता है। तीनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं देवियों सज्जनों। प्रॉब्लम कब होता है, जब वो इम्बेलेंस हो जाते हैं। जब तमोगुण ज्यादा हो, तमोगुण नहीं हो तो आपका जीवन ठीक से आप रह नहीं सकते, क्योंकि सोने के लिए आपको तमोगुण चाहिए, बैठने के लिए आपको तमोगुण चाहिए। अगर आप में तमोगुण ना हो तो आप बेचैनी से रात भर बेचैनी में तड़पते रहेंगे, आप दिन भर बेचैनी से रहेंगे। पर अगर आप बहुत ज्यादा सोने लग गए, 24 घंटे में से अगर आप 20 घंटे ही सोने लग गए, तमोगुण ज्यादा हो गया तो नुकसान करता है। सबकी अपनी बैलेंस होती है। ये दशहरा का या विजयादशमी का पर्व उस शस्त्र का पर्व है, क्षात्र पर्व है, शक्ति का पर्व है, जिसमें पापियों को संहार करते हुए आपको देवी को दिखाया जाता है, या घरों में लोग अस्त्र शस्त्रों को धो के साफ करके उसको पूजा करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं, कि इसका भी हमारे जीवन में महत्व है। बहुत सारे जगह शस्त्र प्रदर्शनी भी होती है, एग्जीबिशन लगता है शस्त्रों का। वीर अपने शौर्य दिखाते हैं, अपनी शूरवीर की कथाएं सुनाए करते थे। धीरे धीरे सब कुछ लोप हो रहा है। अब तो हम इतने ज्यादा मार्केट के कब्जे में आ गए तो अब त्योहार की कोई मतलब नहीं बचता। अब नवरात्र तो इतना सात्विक पर्व होते हुए भी आज जिस तरह हम देखते हैं गुजरात में नवरात्र के नाम पर जो गरबा चलती है, और गरबा में अब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जिस चीज के एडवर्टाइज होता है सबसे ज्यादा, तो आपको शर्म आने लगेगा। तो अब ठीक है, मार्केट की दुनिया है, हर चीज बदलता है, पर उसका भाव यही है। प्राचीन काल में आप देखेंगे जहां भी ब्रह्म और क्षत्र, ज्ञान और शक्ति दोनों मिलके चलते हैं, वो चाणक्य ज्ञान का प्रतीक था तो चंद्रगुप्त बल का प्रतीक था। जब दोनों मिलते हैं तो कोई चेंज आता है। अर्जुन वीर की प्रतीक था वीरत्व का, तो अर्जुन ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक था कृष्ण। अगर नए मॉडर्न एज की कहानियां हम सुनते हैं तो शिवाजी जो मध्य आधुनिक भारत के बड़े राष्ट्रभक्त के रूप में जाने जाते हैं, शत्रुओं से लड़ने के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी अपने कौशल को प्रयोग करने के रूप में, रामदास गुरु था तो शिवाजी बल के धनी थे तो रामदास ज्ञान के धनी थे। तो द्रोण विश्वामित्र जो खुद ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के धर्म को निभाते थे, तो वो पर्व विजयादशमी उसी को सेलिब्रेट करने का नाम है जिस सोसाइटी में शक्ति भी और ज्ञान विद्या दोनों का मिलित रूप से आदर होता हो। देवियों सज्जनों, विजयादशमी जैसे कि कहा दसवां दिन है, 10th day ऑफ अश्विन मास का शुक्ल पक्ष, 9 दिन 9 रात तक लोग नवरात्र का पालन करते हैं। बहुत सारे लोग नवरात्र में उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं। जो उपवास है बहुत बार हम चर्चा करते रहते हैं। उपवास का अर्थ होता है पास बैठना, उप मतलब पास, वास मतलब बैठना, और यह सामान्य अर्थ है कि ईश्वर या प्रभु के पास बैठने के लिए कोशिश करना। तो प्रभु के पास आप शरीर से तो नहीं बैठ सकते क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त है, आपके अंदर भी है बाहर भी है, तो आप उसके पास कैसे बैठेंगे, वो तो ऑलरेडी आपके पास है। पर पास होने पर भी कभी हमें उसकी फीलिंग नहीं होती है कि ईश्वर मेरे पास है, तभी तो हम दुनिया भर दौड़ते रहते हैं उस प्रभु को पाने के लिए, मंदिरों में, मस्जिदों में, आश्रमों में, कहां कहां तीर्थों में, कहां कहां दौड़ते रहते हैं उसको पाने के लिए, क्योंकि वो रियलाइजेशन नहीं हो पाता है कि वो मेरे पास है। और उसको रियलाइज करने के लिए कि वो प्रभु मेरे अंदर ही है, जो कुछ हम करते हैं वो सब धार्मिक प्रक्रिया होती है, धार्मिक साधनाएं होती हैं। ये नवरात्र उन्हीं में से एक था। शरद ऋतु का, शरद ऋतु होता है, ऑटम सीजन होता है, जहां नेचुरली आकाश लेकर पानी तक सब साफ होते हैं। कभी आकाश को देखिए इन दिनों कितना निर्मल होता है, एक आधा बादल कहीं घूमते तो साफ दिखते हैं, उसका नीलापन निखर के आता है आकाश का, तारे साफ साफ तारे और चांद ज्यादा दिखते हैं, बारिश का मौसम खत्म हो चुका होता है। अब पानी को भी देखेंगे उसमें नीलापन दिखता है क्योंकि गहरा और साफ पानी आपको दिखता है। मनुष्य का मन भी इन दिनों बड़ा शांत रहता है, बड़ा अच्छा मौसम होता है। और ये मौसम पूजा का, उपासना का, व्रत का, भक्ति का मौसम होता है। तो पूर्वजों ने मध्य युग में एक पर्व बनाया नवरात्र। ईश्वर को हम अपने 365 के दिन में से कुछ दिन ऐसे निकालें जहां हम प्रभु के को पाने में, उसके नजदीक होने में अपने आप को समर्पित करें, नेचुरली, मेंटली, मानसिक रूप से, फिजिकली नहीं। तो जब आप समय बिताएंगे, जब आपके घर में दो मित्र आते हैं, बंधु आते हैं, अगर आप उनके लिए, उनके साथ समय स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफिस के काम के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, छुट्टी लेते हैं, हाफ छुट्टी लेते हैं, घरों में खाना पीना पहले से बना करके तैयार करके रख देते हैं, बाजार से कुछ सामान लाकर रख देते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा समय आप उसके साथ गुजार सकें, और जो काम वगैरह डे टू डे लाइफ के जो काम है उसको कम से कम रखते हैं, जिससे कि आपके बातचीत में, मिलने में, जुलने में आपको ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकें। वही भाव उपवास का होता है देवियों सज्जनों। जब भी आप व्रत या उपवास रखते हैं, मतलब यही था कि आप कम से कम अपने आप को सांसारिक चीजों में बिजी रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रभु को पाने के लिए कोशिश करें, मन शांत रखें, एकाग्र होने का कोशिश करें, भजन कीर्तन ध्यान जप जो भी ईश्वर को पाने के लिए व्यवस्था, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें। खाना खाना है तो हल्का खाना खाएं, खाना बनाने की झंझट से मुक्ति मिले, काम के दृष्टि से भी जरूरी है। और इसी बहाने, क्योंकि हमारी कल्चर में धर्म, स्वास्थ्य, समाज के प्रति कर्तव्य, इन सबको हम कंबाइंड करके चलते थे। सुबह उठ के तुलसी खाना है नहा धोके, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, महीने में एक बार दो बार आपको उपवास रखना चाहिए, कोई एकादशी को, कोई अष्टमी को रखते हैं, पेट के लिए अच्छा है, पेट को भी विश्राम मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है, अनाज भी बहुत बचता है, काम कम करने को मौका मिलता है घर में, जिससे आपको टाइम ज्यादा मिलता है टीवी देखने के लिए नहीं, थोड़ा ईश्वर भक्ति के लिए। तो वो सब उपवास होता था। नवरात्र के उपवास का भी यही मतलब था कि 9 दिन तक आप अपने आप को प्रभु के शरण में लेने की कोशिश करते हैं, खाना पीना कम करते हैं, घर के काम धंधा कम ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका समय यत्न आपको प्रभु की शरण में जाने के लिए, अपने मन को प्रभु में लगाने के लिए लगनी चाहिए थी। यही उपवास का अर्थ था। इसका अर्थ कतई नहीं था कि आप रेगुलर खाना छोड़ के अल्टरनेटिव खाना ढूंढें, रोटी चावल छोड़ करके साबूदाना की खिचड़ी और किस किस की रोटी, परांठ पूड़ी और ये वेजिटेबल ऑयल छोड़ करके देसी घी का पराठा ये खाने की कोशिश करें, इसका मकसद कभी ये नहीं था। इसका मकसद ये भी नहीं था कि दिन भर आप फलाहार इधर उधर कुछ खाएं, जितना मर्जी खाएं कोई मना नहीं, रात को जरूरत से ज्यादा खाएं, ये कोई हेल्थ की दृष्टि से भी फायदा नहीं हुआ कि आपके पेट को तो कोई डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट तो नहीं मिला, आपके पेट को साफ करने के लिए भी कोई हेल्प नहीं हुआ, मन को भी शांत करने के लिए भी कोई हेल्प नहीं मिला। पर हम ट्रेडिशन को ब्लाइंडली फॉलो किया, जिससे किसी को कुछ लाभ नहीं है कुछ हानि के अलावा, पर क्या करें, ट्रेडिशन ऐसे ही चलता है, जब परंपरा ब्लाइंडली चलती है तो ऐसे ही चलती है। मन शांत होगा, खाने पीने सांसारिक चीजों में कम जाएगा देवियों सज्जनों, तो थोड़ा प्रभु के लिए हम समय निकालेंगे, मन को नियंत्रित करेंगे, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, जो हमारी कमियां है, लोभ मोह द्वेष इत्यादि, उसको थोड़ा परखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अपनी कमियों को ठीक करेंगे, जितनी अपनी अंदर की कमियां ठीक होगा उतना ज्यादा हम प्रभु भक्ति के करीब होंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्रभु की भक्ति में आप कितना फिजिकली पूजा पाठ जप तप करते हैं ये मैटर नहीं करता। इसका अर्थ नहीं कि ये सब यूजलेस है, इनका यूज है। इनका यूज है कि आपको उस आध्यात्मिक या धार्मिक चीजों में मेंटली इन्वॉल्व करने के लिए ये आपको हेल्प करते हैं, एक एटमोस्फियर क्रिएट करते हैं जिसमें कि आप डे टू डे लाइफ से हटके थोड़ी देर के लिए इधर इन्वॉल्व हो जाएं। पर इससे ईश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं है प्रभु के साथ। प्रभु तो सिर्फ आपका मन देखता है, आप मन से कितना पवित्र हो, साफ हो, निर्मल हो। जितना आपका मन निर्मल होगा, साफ होगा, उतना ज्यादा प्रभु के भक्ति में आप ज्यादा लग पाओगे, उतनी आपकी भक्ति अच्छी होगी। अगर मन में निर्मलता नहीं आ रही है, मन में सफाई नहीं आ रही है, तो हम फिजिकली क्या भी करें वो बेकार है। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी मन साफ नहीं हो रहा है तो अच्छा है कि थोड़ी दिन के लिए बंद कर दीजिए। अगर आप 5 साल से काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिल ही नहीं रहा है, या मिल रहा है कि बहुत कम तनख्वाह मिल रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, 6ठे साल होगा, 7वें साल होगा, पूरी जिंदगी तो ऐसी नहीं चलेगी ना। तो 2-3 साल 4 साल आपने देखा, थोड़ा रुक जाओ, देखो इससे आपकी जीवन में कुछ। जब आप रुक जाते हैं तो आपको खुद विचार करने के लिए मौका मिलता है, इससे फायदा है नुकसान है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो करके क्या फायदा, क्यों करें? फेस्टिवल, फेस्टिवल का दूसरा मतलब होता है सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, वो अच्छा है। अगर इससे आपको सुख मिलता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, कहीं से भी सुख मिलता है, अच्छी बात है, किसी भी रूप से अगर सुख मिलता है, पर सुख मिलना चाहिए ना, तड़पना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अगर सुख मिलता है तो ठीक है। तो जब आप नवरात्र में हम उपासना उपवास करते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, अपने मन को प्रभु में लगाने की कोशिश करते हैं, पूरे साल भर नहीं कर सकते क्योंकि हम विरक्त नहीं है, सन्यासी नहीं है, सांसारिक हैं, हमारा परिवार है, घर गृहस्थी है, दुनियादारी है। इसीलिए पूर्वजों ने समय समय पर अलग अलग महीनों में अलग अलग पर्वों के नाम पर व्यवस्था दी है, कभी 1 दिन, कभी 3 दिन, कभी 9 दिन। 10वां दिन विजयादशमी है, 9 दिन तक जो प्रयास किया उसने आपने जीता। क्या जीता? मन को नियंत्रण करने को जीता, अपने अंदर की जो बुराइयां है हर व्यक्ति में, थोड़ा बहुत, ज्यादा कम, अलग अलग तरह की बुराइयां हैं, अलग अलग तरह की बुराइयों का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों को कितना नुकसान करते हैं, खुद पर भी कितना नुकसान करते हैं। अब रात को 12-12 बजे तक सोते हैं, फिर नींद नहीं आती है, ये भी बुराई है, आपको ही नुकसान करता है, इससे आप दूसरों को नुकसान नहीं करते। इसी तरह के तो अपने दिनचर्या को जब आप रिव्यू करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चेंज करते हैं, मन को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, जो रिजल्ट होता है तो आप जीत के निकलते हैं, वही विजयी है। जैन परंपरा में ये बड़े अच्छे शब्दावली हैं, वोकैबुलरी, उनके जितने तीर्थंकर होते हैं, आचार्य होते हैं, महान जो भी होते हैं, उनको उस वीर के रूप में, उनके जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, वो आपको लगेगा कि मानो कोई लड़ाई के, वार के बड़े जनरल थे। जैसे उन महावीर सिद्धार्थ को उनको महावीर कहा जाता है, तो महावीर का अर्थ उनके शारीरिक बल से या किसी युद्ध में लड़ाई करके जीतने से नहीं, क्योंकि बाहरी युद्ध से ज्यादा पावरफुल युद्ध जो होता है वो हमारे अंदर का युद्ध चलता है, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मुझे ठीक करना है, और वो हो नहीं पाता है। इट्स ए कॉन्स्टेंट फाइटिंग बैटल इनसाइड मी। मेरा एक मन का एक आधा कहता है कि ये कोई ये ठीक है, मेरे मन का ही आधा हिस्सा कहता है ये ठीक नहीं है। मेरा मन का आधा हिस्सा कहता है कि मुझे इसको जवाब देना है, दूसरा आधा हिस्सा कहता है क्यों जवाब देना है। ये कॉन्स्टेंट फाइटिंग चलता रहता है। मैं अपने संस्कारों से और आसपास की घटनाओं से दोनों से मजबूर हूं, और जो इस अंदर की लड़ाई को जीत जाता है, अपनी बुराइयों पर जीत हासिल कर लेता है, वो किसी बैटलफील्ड में किसी कमांडर या आर्मी चीफ से बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है। इसके लिए जितनी तपस्या की जरूरत है, जितने समर्पण की जरूरत है, जितने त्याग की और जितने शक्ति की, वो शक्ति फिजिकल यहां नहीं है, जितना विल पावर की, जितना मेंटल पावर की जरूरत है, वो किसी भी मैदान में परमवीर चक्र पाने वाले वीर से ज्यादा शक्ति की जरूरत है। इसीलिए उनके जो जितेंद्रिय होते हैं जैन परंपरा में वीर होते हैं, इसलिए उनको महावीर कहा जाता है। तो जो सन्यासी, जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, वो वीर होता है, क्योंकि उसको भी कॉरेज चाहिए, विल पावर चाहिए, पावर चाहिए, लड़ना होता है, जीतना होता है, पर ये सब कुछ उसके अंदर होता है। जब आप ये कंस्टेंट फाइटिंग में आप जीतते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं इसको फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री के रूप में, और यही है विजयादशमी। अभी आप 2-3 महीने से गीता पढ़ यहां सुन रहे, 16वें अध्याय में वही तो बता रहा है कि देवता और असुर कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है जैसे कोई इंसान है, कोई शेर है, कोई बाघ है, कोई सांप है, ऐसा कोई राक्षस है, कोई देवता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के अंदर के कुछ गुण उसको देवता बना देता है, और अंदर के ही कुछ गुण उसको राक्षस बना देता है। तो वो जो राक्षस बनाने वाले हमारे गुण है, सबके पास अलग अलग गुण होंगे, राक्षस बनाने वाला या देवता बनाने वाले। उस राक्षसीय गुणों को जितना दबाना, उनको हराना अच्छे गुणों से, ये विजयादशमी है। आप एक बड़े पॉपुलर कहानी सुनते होंगे, एक साधु अपने मित्रों के साथ समुद्र के किनारे घूम रहे थे, तो देखा कि समुद्र की लहर में एक बिच्छू फंस गया, वो छटपटा रहा था पानी से बाहर आने के लिए, आ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने अंजलि में वो पानी को बिच्छू को भर करके बाहर लाने की कोशिश की बचाने के लिए, तो बिच्छू ने डंक मार दी तो उनको दर्द हुआ, तो उनके हाथ से अनायास छूट गया, इनको बहुत दर्द हुआ तो छूट गया। अब बिच्छू बेचारा पानी में जाकर फिर तड़प रहा है, फिर परेशान हो रहा है। साधु जी महाराज दोबारा उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो बिच्छू ने दोबारा डंक मारा, तो फिर छटपटाहट हुई, फिर हाथ से निकल गया। तो बार बार साधु जी उस बिच्छू को उठाने की कोशिश करते हैं 2-3 बार, और बिच्छू डंक मार देता है और पानी में गिर जाता है, तो फिर वो छटपटाता है। साथ में रहने वाले लोगों ने पूछा, आप ये क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों बिच्छू को उठा रहे हो? बोले, देखो ये हम दोनों की लड़ाई चल रही है। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो मरने को तैयार है पानी में, पर डंक मारना नहीं छोड़ता है। और मैं इंसान हूं, इससे बड़ा हूं, मेरा स्वभाव दया है, मुझे दया आई इसको बचाने के लिए। वो दया कोई आर्टिफिशियल नहीं था, नेचुरल था। मेरे अंदर इस छटपट परेशान होता हुआ बिच्छू को देखकर दया आई कि मैं इसको बचाऊं, और मैंने बचाने की कोशिश की, तो वो मुझे डंक मारता है, दर्द होता है। बिच्छू में उसका स्वभाव नेचुरल है, इंसान में दया का स्वभाव नेचुरल है, पर हम कंप्रोमाइज कर बैठते हैं सिचुएशन के हिसाब से। पर बिच्छू कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, मुझे बचाओ ना बचाओ, मैं तो डंक मारूंगा ही मारूंगा, मैं पानी में पड़ा रहूं तो मैं क्यों छोड़ दूं अपने नेचर को ये सोच कर कि बिच्छू मुझे डंक मार रहा है तो जाने दो। मैं अपनी दया के साथ क्यों कंप्रोमाइज करूं, मुझे ये लड़ाई जीतने दो। देवियों सज्जनों, ये एक दूसरी टाइप की लड़ाई है। आम लोगों के लिए ये बेवकूफी है, स्टुपिडिटी है, पर कुछ लोगों के लिए ये जीत हार का सवाल है। मुझे अपनी चीजों पर जीतना है। जब वो आप जीत जाते हो तो वो सेलिब्रेशन होता है, आप उसको विजया दशमी मनाओ, विजया प्रथमा बनाओ। विजया दशमी हम उसी रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जब आप अपने मन को जीत जाते हो तो उसके बाद जो जर्निंग शुरू होती है अंदर की ओर चलता है, फिर आपका जो सुप्रीम गोल है कि सारे साम्राज्य का राजा बनना, फिर आप अपने पूरे साम्राज्य का, अंदर के साम्राज्य का राजा बनते हैं, उस परम आत्मा को प्राप्त करते हैं और उसके बाद आप पूरे साम्राज्य का राजा बनते हैं। देवियों सज्जनों, जब हम संसार में देखते हैं, समाज के आसपास देखते हैं, हमें लगता है कि ये मंदिर में सुनने लायक चीज है, प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई अच्छाइयां को जितना जीतता है बुराइयां दब जाती हैं, हमें तो कभी दिखता नहीं है, बुरे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, करप्शन करने वाले लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, माफिया लोग बहुत धनी बनते हैं, हमें दिखता है। दिखता इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर किसी कोने में ये भाव है कि जिसके पास बहुत धन है, करप्शन के कारण है, गुंडागर्दी के कारण है, गलत काम के कारण है, लोभ के कारण है, बहुत धन है, बहुत पावर है तो सुखी होगा। ऐसा नहीं है। मनुस्मृति का यह श्लोक कहता है, अधर्मेणि धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति तत सपत्नान् जयति समूलस्तु विनाश्यति। शकार में प्रिंटिंग गलती है। तो कहता है जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, जब आप गलत रास्ते पर चलते हो, अधर्म के द्वारा चलते हो, ये श्योर है कि आप बहुत आगे बढ़ते हो। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप सोचते हो कि गलत रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो शास्त्र भी कहता है कि अधर्म से व्यक्ति ज्यादा सफल होता है, बहुत आगे जाता है, बहुत सुख भी भोगता है। भद्राणी पश्यति, सब तरफ अच्छा अच्छा देखता है, सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशन ज्यादा पापियों को मिलता है। बड़े बड़े पोस्ट पर जाना आसान होता है। तो आपको सब आपके साथ अच्छा होता है, आप शत्रुओं को, अपने शत्रुओं को आसानी से जीत सकते हो क्योंकि आप मोरलिटी आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, तो आप किसी भी रास्ते में जाकर कुछ भी कर सकते हो। पर ये सब होता है अधर्म से, पाप से, गलत काम से। इसीलिए आम लोगों को लगता होगा कि ये सब चीजें जिन्हें लिए पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़ लिखने ने पर रहे, लोगों का दिमाग भी थोड़ा वैसे ही फिर जाता है। तो पढ़े लिखे लोगों की थोड़ा यह अवधारणा है कि जो मोरलिटी है ये मिडिल क्लास वैल्यूज हैं। ये मिडिल क्लास लोग अपने कॉम्प्लेक्स के कारण जो वैल्यूज अपनाते हैं वो मोरलिटी है। देयर इज नथिंग लाइक मोरलिटी। जैसे मैंने कहा, ज्यादा पढ़ लिखने से भी दिमाग कभी कभी फिर जाता है। तो शास्त्र उन्हीं लोगों को जवाब देता है कि जब आप इमोरल हो जाते हैं, आप एक सर्टन टाइम पीरियड तक बहुत आगे बढ़ते हो, पर जब विनाश होता है तो पूरे जड़ के साथ आपका विनाश होता है। अभी हमने कुछ दिनों से भारत में देख रहे हैं, किसी के एफर्ट के कारण नहीं, नेचुरली बहुत सारे जो तथाकथित सो कॉल्ड धर्माचार्य भगवान बने हुए लोग जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से एक खास लोगों के बीच में भगवान से भी ज्यादा ऊंचा पद पा चुके थे और उस अपने आप को भगवान बनवा करके दुनिया का वो सारा इमोरल काम करवाते थे। और मजेदार बात है कि पूरी सिस्टम, वो गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, लीडर्स हो, आम जनता हो, मीडिया हो, उनको बड़े भक्त भक्तिभाव से रेस्पेक्टेबली उनको मानता था और वो उसका मिसयूज करते जा रहे थे, एक्सप्लोइट करते जा रहे थे। फिर क्या होता है, एक दिन समय आता है, जेल के अंदर छटते रहते हैं, वो सारे पोल खोलता है मीडिया में सालों साल और उसकी बाकी की जिंदगी नरक में सड़ता रहता है। किसी के साथ आज होता है, किसी के साथ कल होगा। इसलिए दरियों सज्जनों, पाप हमेशा थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ता है। रावण भी काफी समय तक दुनिया पर राज किया, कंस ने भी किया, हिरण्याक्ष ने भी किया, हिरण्यकश्यप ने भी किया, जो भी राक्षस की कहानियां आप पढ़ते हैं, दुष्टों की कहानियां पढ़ते हैं, वो सब एक सर्टन पीरियड तक खूब फलते हैं, फूलते हैं, पर उसके बाद जो विनाश होता है पूरी तरह होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि धर्म का, सत्य का, वैल्यूज की, मोरलिटी की काम चलाओ होते हैं, ये नेचर के पार्ट होते हैं, ये प्रकृति के अंग हैं, ये ईश्वर की व्यवस्था है और एक ना एक दिन उनको जितना पड़ता है तब फिर हम सेलिब्रेट करते हैं विजयादशमी के। तो कल जो हमने विजयादशमी सेलिब्रेट किया, हर फेस्टिवल को जरूर मनाइए, बड़े आनंद के साथ मनाइए, बच्चों को समझाइए और खूब जितना आप आनंद ले सकते हैं उसे जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है जीवन में और खुशी भी मिलती है। और इसी बहाने हम अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर भी करते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं और एक प्रेरणा लेते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर, कल जो आपने विजयादशमी मनाई, दशहरा, आपको बहुत बहुत अभिनंदन हो और आपके जीवन में भी सुख बढ़े, धर्म बढ़े, अधर्म का पराजय हो, दुख का पराजय हो, अन्याय का पराजय हो। इसी के साथ